ग्रंथराज भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 49 मेरे पीछे दोहराइए। नैते गुणा न गुणिनो महादादयो ये सर्वे मनः प्रप्तः सहदेव मृत्युः आद्यन्तवन्तुर्गाय विदन्ति त्वाम् एवं ऋषसुधियो विर्मन्ति शब्दात्। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसा कि कई स्थानों पर कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा परमेश्वर को जाना जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य अर्थात भक्त श्लोक संख्या 46 में वर्णित विधियों के विषयों में माथा पच्ची नहीं करते। मौन व्रत श्रुत तपो अध्ययन स्वधर्म, भक्ति द्वारा भगवान को समझ लेने के बाद ऐसे भक्त वेदाध्ययन में रुचि नहीं दिखाते। निसंदेह इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई है। वेदों का कथन है, किम अर्था वयम अध्येषमाहे किम अर्था वयम वक्षमाहे। इतने वेदों का अध्ययन करने से क्या लाभ, उनकी तरह तरह से व्याख्या करने से क्या लाभ। वयम वक्ष्यामहे, किसी को ना तो वेदाध्ययन की आवश्यकता रह जाती है ना दार्शनिक चिंतन द्वारा उसका वर्णन करने की। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 52 श्लोक भी कहना है, यदा हे मोहो कलिलम बुद्धि व्यतीत ऋष्यति तथा गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब कोई भक्ति द्वारा भगवान को जान लेता है तो वेदाध्ययन बंद कर देता है। अन्यत्र भी कहा गया है, आराधितो यदि हरि तपसा तथा कितम तथा किम। यदि कोई भगवान को समझ लेता है और उनकी सेवा में लग जाता है तो कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। किंतु यदि कोई कठिन तपस्या करके भगवान को नहीं समझ पाता तो ऐसी तपस्या व्यर्थ है। ओम अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्री रूपम सागर जातम सहगंडमनाथान्वितम तम सजीवम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। चर्चा क्या चल रही जी नवे अध्याय के अंदर? आज का श्लोक है, जो पिछले श्लोक आपने किए हैं, इनमें जो कहते हैं कि निचोड़ क्या है, समरी क्या है, मतलब तत्व तो क्या है इन श्लोकों के अंदर, व्हाट इज बीइंग स्पेसिफाइड, व्हाट इज बीइंग सेट। भगवान की स्तुति चल रही है ना, तो उसमें जो है भगवान की ग्लोरिफिकेशन चल रही है, और प्रहलाद महाराज जो है वो भगवान की सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। यही हो रहा है ना, ये इसे पिछला श्लोक आपने किया, हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु भूमि अग्नि आकाश तथा जल हैं, आप ही तन्मात्राएँ हैं, प्राण वायु हैं, पाँचों इंद्रियाँ हैं, मन है, चेतना है, मिथ्या अहंकार है, निसंदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु हैं, भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। उसी का आज कंटिन्यूएशन चल रहा है कि ना तो प्रकृति के तीन गुण, ना पांच स्थूल तत्व, ना मन, ना देवता, ना मनुष्य ही आपको समझ सकते हैं। ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति भक्ति करते हैं, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते, अपितु वे व्यवहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। तो जो लास्ट लाइन है इसकी, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते, अपितु वे व्यवहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते हैं, इस लाइन का अर्थ समझना। इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसमें क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, रूपा जी इसकी ट्रांसलेशन के अंदर क्या स्पेसिफाई करते हैं, तात्पर्य में क्या बात बताते हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, हु इज इंटेलिजेंट। रूपा जी भगवद गीता के कई सारे पर्पट्स के अंदर लिखते हैं, धीर पुरुष कौन है, विद्वान पुरुष कौन है, बुद्धिमान कौन है, इंटेलिजेंट कौन है, ठीक है। उसमें जो है उन्होंने एक बात लिखी है, बार बार उस बात को रिपीट किया है कि बुद्धिमान व्यक्ति का अर्थ है जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है। भौतिक संसार में हम लोग बुद्धिमान हो सकते हैं, डॉक्टरी कर ली है, इंजीनियरिंग कर ली है, एमबीए कर लिया है, पीएचडी कर ली है, एमफिल कर लिया है, बहुत बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर ली हैं, परंतु उसको वो इंटेलिजेंट नहीं मानते। तो रियल इंटेलिजेंस, रियली इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, सही मायनों में बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहते हैं? तो सातवां अध्याय है भगवद गीता का, उसने दूसरे श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिसको ईश्वर अर्थात भगवान का ज्ञान है, जिसको जीव का ज्ञान है, और जिसको प्रकृति का ज्ञान है, जिसको ये तीन ज्ञान है, फिर इन तीनों ज्ञानों से कनेक्टेड कर्म का ज्ञान है, जिसको ये ज्ञान है वही व्यक्ति बुद्धिमान है, दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, बिकॉज अब वो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो गया, आध्यात्मिक लेवल पे उसको अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब भौतिक संसार में कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए तो आपको जो एक्चुअल बुद्धिमता है वो नहीं आएगी। तो इस सब ज्ञान को प्राप्त करने का कैसे आप बुद्धिमान कैसे बन जाते हो, नाउ डू बिकम इंटेलिजेंट, क्या होगा इसके प्राप्त करने से? भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जीव का ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो आप में क्या इंटेलिजेंस आ गई, क्या बुद्धिमता आ गई, क्या अकल आ गई कि हाँ भाई मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उससे क्या होगा, क्या व्हाट इंटेलिजेंस यू गेन? भाई इंजीनियरिंग करी है तो मुझे पता है कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, मैंने उसका मुझे ज्ञान है, कंप्यूटर्स कैसे चलते हैं, कंप्यूटर्स कैसे मेंटेन होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या वगैरह वगैरह, दस हज़ारों फील्ड्स हैं कंप्यूटर वर्किंग के अंदर, तो मुझे उनका ज्ञान है, मुजाबिक हम एक्सपर्ट इन दैट, मुझे उसका ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सिविल इंजीनियरिंग करी है तो पुल कैसे बनेंगे, मकान कैसे बनेंगे, हाईवे कैसे बनेंगे वगैरह वगैरह, जो कि कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड चीज़ है, मुझे उनका ज्ञान हो गया। नो आई कैन गिव गाइडेंस टू पीपल कि यस इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसको कैसे किया जा सकता है। पर जब हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट की बात करते हैं कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो व्हाट हैज ही गेन्ड, सो क्या लाभ की प्राप्ति हुई है उससे। तो सर्वप्रथम क्या है कि वो अंडरस्टैंड करता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ, मुझे जो मनुष्य जीवन मिला है किस लिए मिला है, क्यों प्राप्त हुआ है। मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करके वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल पड़ता है और उसमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है, बिगनिंग कहाँ से होती है कि मैं कौन हूँ। अब बाहर पूछिए तो लोगों को जो है शरीर और आत्मा में भेद नहीं मालूम है, भेद नहीं मालूम है। सुबह ही मुझे, मैं जब घर से चलने लगा, अब गाड़ी में बैठने लगा तो एक फ़ोन आया गुड़गांव से, तो एक माता जी हैं, कहने लगी कि हम किसी को प्रीच कर रहे हैं आजकल, तो उनके घर में डेथ हो गया, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक डेथ वाले जो उठाला होता है, शोक सभा होती है, श्रद्धांजलि सभा होती है, उसमें एक आप लेक्चर कर दें जिसमें कि लोगों को बेसिक भेद बताएं कि शरीर और आत्मा में क्या भेद है। व्हाट डज इट मीन कि पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ दिस, उनको इसी का ज्ञान नहीं है। बेसिक जो नॉलेज है कि मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान नहीं है। तो जैसे ही आप स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट आते हैं, जब आपको बुद्धिमता प्राप्त होती है या बुद्धि ज्ञान प्राप्त होता है, तो आपके अंदर सबसे पहली बात ये आती है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आप चलते हैं, उसको समझ लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाऊँगा ये नहीं पता है, तो कहाँ जाना चाहिए इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कौन सी योनि प्राप्त होगी ये मैं नहीं जान सकता, बट पर्पस क्या है, जाना कहाँ चाहिए, जिस मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसका मुझे ज्ञान हो जाता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मुझे क्या कार्य करने हैं, कौन से कर्म करने हैं, मुझे उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता। फिर मैं समझता हूँ भगवान का ज्ञान है कि भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उस संबंध को निभाना कैसे है, उस संबंध को निभाना क्यों है। अर्थात आपको संबंध ज्ञान होता है, अविधेय ज्ञान होता है और प्रयोजन ज्ञान होता है। इन तीन ज्ञान की आप प्राप्ति करते हो। अब निभाना कैसे है उसकी चर्चा यहाँ आ रही है। कैसा बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करता। कई बार हम जो है ना विद्वान बनने की कोशिश करते हैं, मुझे ये भी आता है, मैंने ये भी पढ़ा 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 है, मैंने भी पढ़ा है। किताबें घोट घोट के मैं इंजीनियर तो बन गया, पर उस इंजीनियरिंग का जो मैंने नॉलेज गेन किया है उसको प्रैक्टिकल शेप देना नहीं आया। अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया कि सर मैं मकान बना रहा हूँ, आप सिविल इंजीनियर हैं, जरा मुझे गाइड करिए, देखो ऐसा है कि पूरी किताब बता देंगे उसको, पर मर्म की बात नहीं बताएंगे कि तेरे को पिलर कैसे खड़े करने हैं, तेरे को छत कैसे डालनी, किताब पढ़ा देंगे पूरी, क्योंकि ज्ञान है। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि सर्वस्य चाहदम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश सर्वमेह वेद वेद्यो वेदांत कृत देव दिविदेव चाहम। अर्थ क्या बताया, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों द्वारा जानने के योग्य हूँ, निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। मैं ही वेदों द्वारा जानने के योग्य हूँ, जान तो लिया वेद पढ़ के, अब क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, भाई कहीं रहे हूं मुझे कोई फर्क पड़ रहा। वो बैकुंठ में रहे, वो गोलोक वृंदावन में रहे, उसे मुझे क्या फर्क पड़ता। आम आदमी ये सवाल करता, वो अपने घर खुश है, मैं अपने घर खुश हूं, आम व्यक्ति ये बात कहता। उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, जहां मर्जी रहे वो भगवान है, उनकी मर्जी जहां मर्जी रहे, मुझे क्या अंतर पड़ता है? व्हाट डज इट मेक अ डिफरेंस टू मी? मेरे को तो इस घर में रहना है, यहां रोटी कमानी, यहां खाना है, मुझे यहां मजे करने, मुझे यही आनंद लेना है, मुझे इससे क्या मतलब वो कहां रह रहे हैं? बट जानने का अर्थ क्या है? जब आप पूर्ण आत्म साक्षात्कार के ज्ञान पे चलते हो, जब आपको यह ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि मेरा उनसे संबंध क्या है, उस संबंध को निभाना कैसे है, वो निभाना क्यों है, तब व्यक्ति यह ज्ञान प्राप्त करता है कि मैं भगवान का अंश हूं, और अंश होने के नाते फिर ज्ञान प्राप्त करता है कि मेरा कर्तव्य है अंशी की सेवा करना, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। क्या मिलेगा? मैं उनकी सेवा क्यों करूं? मैं बच्चों की सेवा करूंगा, कुत्ते की सेवा करूंगा, पत्नी की सेवा करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, भगवान की सेवा क्यों करूं? मतलब अभी उसके मन में वो प्रश्न जो है उसे उद्वेलित कर रहे हैं, उसे बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसको बात यह प्राप्त होगी कि भगवान की सेवा करने का लाभ है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ये ज्ञान प्राप्त हुआ, अब भगवान का प्रेम प्राप्त करना तो क्यों करूं? पत्नी का प्रेम प्राप्त करूंगा, पड़ोसन का प्रेम प्राप्त करूंगा, भगवान का प्रेम क्यों प्राप्त करूंगा? मेरा इंटरेस्ट तो वहां है। फिर बात समझ में आएगी कि भगवान का प्रेम प्राप्त करके मेरे जीवन का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। क्या है? भगवान के धाम में प्रवेश मिल जाएगा। आइडिया मिल गया ना, ज्ञान प्राप्त हुआ, अब भगवान के धाम में प्रवेश कर गए। क्यों प्रवेश करेंगे? फिर ज्ञान प्राप्त हुआ कि वहां से लौटकर इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा। फिर 84 लाख योनियों का पता लगा, फिर मालूम पड़ा कि दुख क्या है, मिजरीज क्या है, सुख क्या है। मीन्स आपको एक एक करके सारे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अब उस ज्ञान की प्राप्ति तो करते जा रहे हैं, पर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होनी है, उसके लिए भगवान के धाम में कैसे जाना है, वो सेवा कैसे करनी है, वो प्रेम कैसे प्राप्त करना है, उसको भूल गए। सेवा कैसे करनी है ये ध्यान नहीं दिया। तो यहां जो है भगवान बता रहे हैं कि वेदों के द्वारा, अर्थात शास्त्र है, भगवद गीता है, भागवतम है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इतिहास है, इनके द्वारा आपको मेरे बारे में जानना चाहिए, परंतु एक्चुअल जानने का तरीका क्या है? दैट इज भक्ति। जब तक आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप उसको जान नहीं पाएंगे। पढ़ता था इनके बारे में, सुनता था, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, परंतु जब मैं इसके लिंक में आया ना तब मुझे पता क्या हुआ, एग्जैक्टली मुझे तब पता लगा। पढ़ने से कुछ नहीं पता लगा, पढ़ने से तो एक थ्योरिटिकल बात थी, हाँ जी ये बड़े अच्छे हैं, शक्ल सूरत ये है, यहाँ रहते हैं, ऐसा मकान है, ऐसा ये, ऐसा, साधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त हुआ। पर जब मेरा उससे लिंक हुआ, डे टू डे संबंध बना, उनसे मैंने उनको जानने का प्रयास किया, तब मुझे पता लगा कि यस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो जब तक आप भगवान से लिंक नहीं बनाओगे, भगवान की सेवा में नहीं आओगे, भगवान के साथ संबंध एस्टैब्लिश नहीं करोगे, तब तक भगवान को समझ नहीं सकते। और संबंध को एस्टैब्लिश करने का तरीका यहां बताया है व्यवहारिक भक्ति। वो व्यवहारिक भक्ति क्या है? भक्ति अव्यवहारिक या भक्ति व्यवहारिक, दो ही शब्द बने ना, फिर एक व्यवहारिक भक्ति होनी चाहिए, एक अव्यवहारिक भक्ति होनी चाहिए। तो अव्यवहारिक भक्ति क्या है और व्यवहारिक भक्ति क्या है, दोनों में क्या भेद है? इसी शब्द को हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट से देख रहे हैं, व्यवहारिक भक्ति और अव्यवहारिक भक्ति। अव्यवहारिक मीन्स मैकेनिकल, सेंटीमेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है भगवान के प्रति, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है, मैकेनिकल है। आए प्रणाम किया चले गए, आए देखा दर्शन किया चले गए। आपका भगवान के प्रति व्यवहारिक क्या है कि मैं अंश हूं और ये अंशी हैं, मेरे को इनकी सेवा में लगना है। सेवा कैसे करनी है, व्यवहार है, वो लर्न करना पड़ेगा। शबनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम साख आत्मनिवेदनम। वो व्यवहारिक भक्ति का ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? अगर किताब पढ़ के सारे एमए पीएचडी कर जाएं तो स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। व्हाई शुड दे गो टू कॉलेज? कॉलेज जाते हैं ना, किताबें तो बाजार में अवेलेबल हैं, बुकशॉप पे सारी किताबें अवेलेबल हैं, जो मर्जी किताब ले लो आप, गाइड्स भी अवेलेबल हैं, टीवी पे भी दिखाते हैं, ज्ञान दर्शन आता है, सारे क्या पढ़ाई कराई जाती है, छठी क्लास की, सातवीं क्लास की, आठवीं क्लास की, सब पढ़ाई ज्ञान दर्शन पे हो रही है। फिर आप बच्चे की जो है महीने में 10,000, 8,000, 6,000 फीस भरते हो, सवेरे सवेरे ठंड के अंदर पढ़ाते हैं बच्चे को, 5:30-6 बजे बस स्टॉप पर खड़े हो जाते हो, बस लेने आ रही है, कार में छोड़ने जाते हो, कार में लेने जाते हो, दोपहर में टाइम यूज़ करते हो अपना। वाई वाई वन शुड गो टू स्कूल? वाई गो टू कॉलेज? जब सारा ज्ञान बुक्स में अवेलेबल है, सारे ग्रंथ पढ़ाई के जो किताबें हैं उनमें सारा ज्ञान अवेलेबल है, तो फिर आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता क्या है, स्कूल बच्चे को भेजने की आवश्यकता क्या है? वही सवाल है, सॉल्व किए हुए हैं, 4 साल में एक्सरसाइज दिए हुए हैं, वैसे ही करनी है, कर लो घर बैठ के, पढ़ लो घर बैठ के, व्हाई शुड यू गो टू कॉलेज? तो व्यवहारिक ज्ञान अर्थात उस व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो व्यवहारिक ज्ञान में एक्सपर्ट हो। तो भक्त बनने के लिए भक्त का संग करना पड़ेगा, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर आपको भक्ति करनी है तो जैसे यहां कहा गया भक्त्या मां अभी जानाति, भक्त भक्त भक्ति के द्वारा ही परमेश्वर को जाना जा सकता है। तो भक्ति कैसे करनी है ये तो भक्ति बताएगा ना, किताब पढ़ के कैसे ज्ञान हो जाएगा? किताब पढ़ के ज्ञान हो सकता है क्या? तो कॉलेज जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको टेंपल आना पड़ेगा, दर्शन करने पड़ेंगे, भक्त का संग करना पड़ेगा, सेवा में लगना पड़ेगा। उस सेवा क्यों करनी है इस मर्म को समझना पड़ेगा, भक्त का संग क्यों करना है इस मर्म को समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ये मिनिमल ज्ञान है, मिनिमल मिनिमल। आपसे कहा सिंपल भाई, ये सामने ठाकुर जी खड़े हैं, ये बिल्कुल साक्षात भगवान है, पत्थर की मूर्ति नहीं है, ज्ञान है ये, एक लाइन का ज्ञान है, इसमें बहुत ज्यादा वेद शास्त्र की बात नहीं हम कर रहे हैं। पर एक भक्त कह रहा है, एक व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत है वो ये बात कर रहा है, तो मुझे उसकी बात को स्वीकार करने में श्रद्धा होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, भक्त का संग करना है और उसके संग में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्रोसेस प्राप्त होता है, जो रास्ता मिलता है, मेरी उस रास्ते में, उस प्रोसेस में, उस ज्ञान में श्रद्धा होनी चाहिए, एब्सोल्यूट फेथ। कोई अपील नहीं, दलील नहीं, इफ नहीं, किंतु नहीं, लेकिन नहीं, बट नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स कि ही इज़ ए एडवांस्ड पर्सन, और एडवांस्ड पर्सन जो है भक्ति के अंदर एडवांस्ड है, ये मेरे को ज्ञान दे रहे हैं तो मुझे इस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शंस या कोई क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, एज इट इज, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में मुझसे ज्यादा प्रबुद्ध हैं, मुझसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, उनको भगवान का ज्ञान मेरे से ज्यादा है। अब एक टेक्निकल बात करते हैं। यहां कहा जा रहा है, एक शब्द इस्तेमाल आया है इसके अंदर, आदि अंतवंता, जिनका आदि तथा अंत है। और भगवान का को आदि और अंत है क्या? नहीं है, नहीं है ना। अब जिनका आदि नहीं है उनके बारे में आप कैसे जान सकते हो? जिनकी शक्तियां अनंत हैं, जिनके रूप अनंत हैं, जिनके विस्तार अनंत हैं, उस अनंत को आप शरीर में जब धारण किया हुआ है, जिसका अंत है, ये बुद्धि जो है एक दिन तो समाप्त होगी ना, भगवान के धाम जाएंगे तो बुद्धि यहीं रह जाएगी, साथ नहीं जाने वाली, जाएगी साथ क्या? जब भगवान के धाम जाएंगे तो मन बुद्धि अहंकार साथ जाएगा क्या? ये शरीर साथ जाएगा क्या? तो विनाशील है ना ये, क्या विनाशील वस्तु के द्वारा अविनाशी भगवान को जाना जा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? क्या बुद्धि के द्वारा आप भगवान को जान सकते हो? भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कहा है नहीं कहा? मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं, भगवान ये कह रहे। भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान क्या साधारण है या दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, कैसा है? अगर वो दिव्य ज्ञान है, इसको हम स्वीकार करते हैं, तो क्या दिव्य ज्ञान को समझने के लिए एक सांसारिक बुद्धि जो हमारे पास है, जो भौतिक बुद्धि है, सक्षम है? इज इट पॉसिबल फॉर दिस इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दैट? दिव्य ज्ञान को समझने के लिए क्या संभव है? इसीलिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये न मामो पयांति ते। जो निरंतर लगातार प्रीति पूर्वक प्रेम सहित मेरा भजन करते रहते हैं, भजन में सेवा है, भक्ति है, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, उस बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे पास आ सकते हैं। तो भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को समझने के लिए भगवान द्वारा ही बुद्धि दी जाएगी, इस बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते आप। और बुद्धि जो भगवान देंगे वो कब देंगे? जब आप उनकी भक्ति में रत हो जाओगे। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भजन करना है प्रीति पूर्वक, मजबूरी में नहीं, कंपल्शन में नहीं, मुसीबत समझ के नहीं, प्रेम सहित, प्रेम पूर्वक भजन करिए, प्रेम पूर्वक सेवा करिए, प्रेम पूर्वक जितना ज्ञान आवश्यक है उतना प्राप्त करिए। ज्यादा ज्ञानी बन जाएंगे तो उसका डेस्टिनेशन क्या है? रूपा जी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक के परपट में लिखते हैं भगवद गीता में कि जो ज्ञानी है उसका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ तक पहुँचता है वो लोग? वृंदावन जाता है या ब्रह्म ज्योति तक जाता है? कहाँ तक जाता है? तो आप वो लोग वृंदावन जाना चाहते हैं कि ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहते हैं? कहाँ तक जाना चाहते हैं? वट इज योर डेस्टिनेशन? कहाँ तक की इच्छा है? तो ज्ञान चाहिए, चाहे एक लाइन का हो, एक लाइन का। रूपा जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के 3rd स्कंद के 29वें अध्याय के 16वें श्लोक में, बहुत बढ़िया परपट लिखा है उन्होंने। उस परपट में लिखते हैं एक नियोफाइट डिवोटी, नव दीक्षित भक्त, भगवान के अर्च विग्रह के सामने खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। उनको भगवान स्वीकार नहीं करता। वो भगवान के अर्च विग्रह के सामने खड़ा होके भगवान से दर्शन देने की प्रार्थना करता। परंतु जो एक एडवांस डिवोटी है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस काफी कर चुका है, एडवांस हो चुका है, वो क्या कहता है कि भगवान आपने अर्च विग्रह के रूप में अपने दर्शन देके मुझे कृतार्थ कर दिया, अब बताएं मैं आपकी सेवा में कैसे लगूं? दर्शन दोनों कर रहे हैं, नव दीक्षित भी वही दर्शन कर रहा है और एडवांस डिवोटी भी वही दर्शन कर रहा है, परंतु दोनों के भाव में अंतर आ गया, दोनों के भाव में चेंज है कि वो अर्च विग्रह को साक्षात भगवान स्वीकार करता है और नव दीक्षित अर्च विग्रह को भगवान स्वीकार नहीं कर रहा। अब ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्त जो एडवांस्ड भक्त है उन्होंने कहा भाई अर्च विग्रह में भगवान प्रतिष्ठित है, भगवान अपने आप को स्वयं प्रकट कर देते हैं, तो ये स्वयं भगवान है, भोग स्वीकार करते हैं, अर्चना स्वीकार करते हैं, वंदना स्वीकार करते हैं, इस अर्च विग्रह के अंदर और भगवान में कोई भेद नहीं। इतना ज्ञान दिया और आपने स्वीकार कर लिया, उसमें आपको कोई इफ किंतु लेकिन परंतु की कोई आवश्यकता नहीं रही। नहीं तो आप पूछोगे पत्थर का बना हुआ है, मार्बल है, कैसा मार्बल है, ये काला है कि कौन सा पत्थर काला इस्तेमाल किया है, लगा है, नाक अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, इसको कैसे भगवान मान लें, ये बांसुरी तो बजती नहीं सुनाई दे रही मेरे को, आप तो पत्थर की पूजा किए जा रहे हो, मालाएं लाखों रुपए की आपने साल भर में चढ़ा दी, क्योंकि उसके मन में इनको भगवान स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसने एक लाइन का ज्ञान जो मिला, एक लाइन का ज्ञान, एक वाक्य का ज्ञान मिला कि ये साक्षात भगवान है, इनको स्वीकार कर लो। एक ने स्वीकार कर लिया, दूसरे ने स्वीकार नहीं किया। तो भगवान को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु उस समझने के लिए मैंने खोद खोद के सारे वेद पढ़ दिए और अंत में जाके फिर मैं कहता भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं। खूब पढ़ाई करी, बहस हो गई, आप उपनिषद पढ़ो जी, उसमें भगवान को निराकार कहा गया है, मैंने पढ़े हैं, देखो आप लिखा है कि नहीं लिखा। अरे भले मानस, तूने पढ़ा है तो जरा राधोपनिषद पढ़ ले, कृष्णोपनिषद पढ़ ले, महापनिषद पढ़ ले, रामपुर तापनिषद पढ़ ले, राम उत्तर तापनिषद पढ़ ले, नरसिंहपुर तापनिषद पढ़ ले, नरसिंह उत्तर तापनिषद पढ़ ले, पढ़ तो सही, बिगनिंग में भगवान को निराकार स्थापित किया गया है, पर जो आखिरी शब्द उपनिषद है उनके अंदर भगवान को सगुण और साकार स्थापित किया गया है, वहां तक तो पहुंच, वहां तक नहीं पहुंचे। वेदों की अलंकारमय भाषा से आकृष्ट हो गए और वहीं पर रुक गए। कहां रुक गए? वेदों में सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे करनी है, अपना सामान कैसे तैयार करना है भौतिक भोग भोगने के लिए, उसका ज्ञान दिया गया हुआ है, वहीं आके अटक गए, ज्ञान नहीं लिया पूरा। तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको भक्त का संग करना होगा, भक्ति में लगना होगा, बिना भक्ति में लगे आप भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए कहा गया है भक्त्या माम अभी जाना थी, भक्त ही भगवान को जान सकता है, और मतलब भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तो आज इतना ही, अभी एक छोटा सा प्रकरण है, श्री कृष्ण कालिया कृष्णदास जी का तिरोभा दिवस है, तो उनके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कालिया कृष्णदास के स्मरण मात्र से व्यक्ति को निश्चय ही श्री चैतन्य एवं श्री नित्यानंद की प्राप्ति होगी। चैतन्य भागवत में ऐसा उल्लेख है, नित्यानंद प्रभु के प्रति सर्वतः समर्पित कालिय कृष्णदास निताई के कर कमलों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम आज बात कर रहे हैं, उसी से कनेक्टेड है। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने वृंदावन में भजन करते हुए अपनी देह त्यागी। ब्रज लीला में कृष्ण बलराम के एक गोप सखा लवंग है, रे कृष्णा शिल्पोपाद की, हिताई गौर प्रेमानंद।